तारीख 11 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार, कार्यक्रम दिनभर। नमस्कार। लोकसभा चुनावों का पहला चरण, 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 91 लोकसभा सीटों पर पड़े वोट, पर बस्तर के एक बूथ पर
जी अब आ नहीं रहे अभी तो फिलहाल मतदाता, और चाहते हैं कि हम आए वहाँ बाहर से मतदान।
कितने वोट पड़े हैं अब तक?
अभी तक सर 2 वोट पड़े।
रायबरेली में सोनिया गांधी तो अमेठी में स्मृति ईरानी ने भरा पर्चा।
आज नामांकन जनता के स्नेह और आशीर्वाद के साथ भरा है। विजयश्री की घोषणा जनता की उपस्थिति से ही आज हो चुकी है।
विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज लंदन में इक्वेडोर के दूतावास से गिरफ्तार। कार्यक्रम में आपकी राय भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। लोकसभा चुनाव के पहले दौर में गुरुवार को 11 अप्रैल को 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। नक्सल प्रभावित महाराष्ट्र की 7 और छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर मतदान 5 बजे संपन्न हो गया था। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को लंदन में इक्वाडोर के दूतावास से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो यहां लगभग 7 साल से शरण लेकर रह रहे थे। तस्वीरों में नजर आता है कि सफेद बालों और दाढ़ी वाले एक शख्स को पुलिस की गाड़ी की ओर ले जाया जा रहा है। असांज पर स्वीडन में बलात्कार के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें दूतावास में शरण मिली थी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेरेमी हंट ने कहा कि ये अच्छी बात है कि असांज के भविष्य का फैसला ब्रितानी न्याय व्यवस्था के तहत होगा। उन्होंने कहा,
It's not so much Julian Assange being held hostage in the Ecuadorian embassy. It's actually Julian Assange holding.
ऐसा नहीं था कि जूलियन असांज को इक्वाडोर के दूतावास में बंधक बनाकर रखा गया था। दरअसल जूलियन असांज ने इक्वाडोर के दूतावास को ही बंधक बना लिया था, और उनके लिए इसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। अब पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित ब्रितानी न्याय व्यवस्था के तहत सही ढंग से स्वतंत्र रूप से फैसला किया जाएगा। ये थे ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेरेमी हंट के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने ब्रेग्जिट को 6 महीनों से अधिक समय के लिए टालने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि अपने वादे को पूरा करना उनकी प्राथमिकता में है। ब्रेग्जिट की नई समय सीमा 31 अक्टूबर होगी। ये तारीख ब्रसेल्स में देर रात तक चली वार्ता के बाद तय हुई है। इसका मतलब ये होगा कि मई महीने में ब्रिटेन को यूरोपीय संसद के चुनावों का आयोजन करवाना होगा। लेबर नेता जेरेमी कॉर्बिन ने ब्रेग्जिट टलने को कूटनीतिक नाकामी बताया है। टेरेसा मे ने हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा, हमें ये जो अवकाश मिला है, इसका असर ईस्टर के बाद लौटने पर लिए जाने वाले हमारे फैसलों पर दिखना चाहिए, ताकि हम गतिरोध को खत्म करने का रास्ता निकाल सकें, ताकि हम यूरोपीय संघ से एक अच्छे समझौते के साथ जल्दी से जल्दी बाहर निकलें और हमें यूरोपीय संसद के चुनाव न करवाने पड़ें। और सबसे बड़ी बात, हमें जनमत संग्रह का सम्मान करते हुए अपने देश को ब्रेक्जिट देना ही होगा। ये थे ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरेसा मे के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रीना और रवीना नाम की 2 हिंदू लड़कियों को उनके पतियों के पास भेज दिया है। कोर्ट ने उस जानकारी के आधार पर यह फैसला लिया जिसमें कहा गया था कि दोनों लड़कियों की उम्र 18 साल से अधिक है, और ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उन्हें जबरन मुस्लिम बनाया गया। कुछ समय पहले सूडान के रक्षा मंत्री जनरल अवाद इब्न औफ ने सरकारी टीवी पर आकर ऐलान किया है कि राष्ट्रपति उमर अल बशीर को सत्ता से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब से 2 साल के अंदर सैन्य परिषद के तहत सत्ता का बदलाव किया जाएगा, जिसके तहत नया संविधान बनाकर चुनाव करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कैसे देश पर सही से शासन नहीं चलाया जा रहा था। उन्होंने पिछले दिन हुए विरोध प्रदर्शनों में गई जानों के लिए भी खेद जताया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने कहा है कि गर्भपात पर लगा प्रतिबंध असंवैधानिक है। कोरिया में 1953 से ही गर्भपात पर प्रतिबंध लगा हुआ था। इस कानून के विरोध में अभियान चलाने वालों ने अदालत के फैसले को महिला अधिकारों के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। संवैधानिक अदालत के सामने जमा हुए सैकड़ों लोगों ने अदालत का फैसला आते ही जश्न मनाया। दक्षिण कोरियाई कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस प्रतिबंध के कारण महिलाओं को सामाजिक रूप से पृथकता का अनुभव करना पड़ता था और असुरक्षित तरीके अपनाने पड़ते थे। ये कानून अगले साल तक जारी रहेगा, तब तक सरकार को नया कानून बनाना होगा। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। आप इस कार्यक्रम को bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हाथ में मतदान की पर्ची और लाइनों में अपनी बारी का इंतजार करते लोग, या फिर उंगली में लगी नीली स्याही दिखाते लोग, मतदान केंद्रों पर आज ये नजारा आम था। आज से भारत में नई सरकार बनाने के लिए प्रतिनिधि चुनने का काम शुरू हो गया। लोकसभा चुनावों के पहले चरण में भारत के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 91 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। आज से शुरू हुई ये जो पूरी कवायद है 39 दिनों तक चलने वाली है और 19 मई को आखिरी चरण का मतदान है, 23 मई को वोटों की गिनती है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है दिव्या आर्य। दिव्या, सबसे पहले ये बताएं कि जो पहले चरण के मतदान की खास बातें क्या रही।
अभी चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता चल ही रही है, तो अभी तक की जानकारी ये है कि भारी मात्रा में वोट डाले गए हैं। तेलंगाना में 60% और आंध्र प्रदेश में 55%, यहाँ की सारी सीटों पर आज मतदान था। कई और प्रदेशों में कुछ कुछ सीटों पर मतदान हुआ। अंडमान में 70% मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ जहाँ पर सिर्फ बस्तर सीट पर ही
एकमात्र सीट
पर आज वोटिंग होनी थी, वहाँ सिर्फ 56% मतदान हुआ। लेकिन उस सीट पर जिसके पास एक हमला हुआ था हाल ही में, वहाँ बहुत ज़्यादा मतदान हुआ। आइए सुनते हैं चुनाव आयोग की बात।
Five security personnel along with MLA was killed in Dantewada. Commission took special strong security measures to ensure fear-free polling in this area.
चुनाव आयोग बता रहे थे कि खास यहां पर इंतजाम किए गए थे। ये श्यामगिरी पोलिंग बूथ का जिक्र कर रहे हैं जिसके पास ही हमला हुआ था, जिसमें एक बीजेपी विधायक और चार लोगों की मौत हुई थी। वहां 77% वोट डले। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि इसी, आप जानते हैं चुनाव आयोग की बहुत अभी पिछले दिनों आलोचना हुई है कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की कई जगह अवहेलना हुई और उसके बावजूद उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बताया कि एक पोर्टल अब तैयार किया गया है इंटरनेट पर जिसको जिला स्तर पर ले जाया जाएगा और जहां पर सीधा आप शिकायत कर सकते हैं और कार्रवाई की जानकारी भी आपको वहां सीधा अपडेट की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि सी विजिल से यानी कि जो सतर्क लोग रह सकते हैं, सिटीजन विजिल, आम लोग सी विजिल के जरिए अपनी शिकायतें दे सकते हैं और ऐसी 7 लाख शिकायतें उनके पास, 7 लाख लोगों ने शिकायतें की और उनके ऊपर भी 71% पर कार्रवाई की गई।
बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या। तो जिस बस्तर सीट का जिक्र दिव्या आर्य कर रही हैं और चुनाव आयोग के मुताबिक वहां पर 56% मतदान हुआ है, उसी बस्तर सीट का मैं जिक्र करने वाला हूं जहां पर माओवादियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। हमारे सहयोगी सलमान रावी बस्तर के एक मतदान केंद्र पहुंचे जहाँ सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग की व्यवस्था तो थी लेकिन वोटर नदारद।
यह है नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले का किलेपाल का इलाका जहां पर 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। माओवादियों के चुनावी बहिष्कार के बाद सुदूर इलाकों से बूथों को यहां पर स्थानांतरित किया गया है। कहा जाता है कि यहां पर चुनाव कराना कोई जंग लड़ने से कम नहीं है और बिल्कुल वैसा ही माहौल है। मोर्चे पर चारों तरफ जवान खड़े हैं, छत के ऊपर बूथ के अंदर जाते हैं लोगों से बात करने के लिए कि क्या असर पड़ा है यहाँ पर इस बहिष्कार का नक्सलियों के। यहाँ पे पीठासीन पदाधिकारी वगैरह, चुनाव अधिकारी हैं सब यहाँ पर।
मेरा नाम लखमाराम तर्मा है।
कितने वोट पड़े हैं अब तक?
अभी तक सर 2 वोट पड़े हैं।
2 वोट पड़े हैं। कौन कौन से गांव का है यहाँ पर?
यहाँ पर सर 5-6 गाँव के। 12
कितनी दूर है यहाँ से वो गाँव?
वो गांव का तो आइडिया नहीं है सर। हाँ। लेकिन फिर भी 6 आ रहे हैं।
यहाँ चुनाव कराना एक जंग लड़ने जैसा होता है। यहाँ बैठे हुए आप, सिर्फ 2 ही वोट पड़े हैं, इतनी देर हो गई, 4-5 घंटे हो गए
जी। अब आ नहीं रहे अभी तो फिलहाल मतदाता और चाहते हैं कि हम आए वहाँ बाहर से मतदान, लेकिन अब इस बारे में कुछ कह नहीं सकते।
तो अब ये कुछ कह नहीं सकते हैं इस बारे में, लेकिन एक बात यह है कि यहाँ पर एक दहशत का जो माहौल है, खासतौर से ये कुआकोंडा थाना का इलाका है, ये वही इलाका है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के MLA भीमा मंडावी को 2 दिन पहले माओवादियों ने विस्फोट में मार दिया था। सलमान रावी, BBC दंतेवाड़ा।
सीधे कार्यक्रम में शामिल है सलमान रावी। सलमान रावी, माओवादियों के बहिष्कार की धमकी के बावजूद इतनी वोटिंग हो गई, इस सीट पर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, क्या वाकई सिर्फ 2 ही वोट पड़े शाम तक?
जी, वो मैंने फिर बाद में उसको क्रॉस चेक किया तो पता चला कि इस सीट पर 2 जो विधानसभा का जो ये इलाका है, गुमलिया पाल है, वहां पर 1,082 मतदाताओं में सिर्फ 2 वोट पड़े। अलनार में तो 1 वोट नहीं पड़ा।
हिंडौरी का जो
शून्य है और हिंडौरी जो एक जगह है उसका जो मतदान केंद्र है वहां भी 2 वोट पड़े। लेकिन दहशत के साए में, क्योंकि शुरुआत ही बड़ी खराब हुई है, लगातार घटनाओं को अंजाम दिया नक्सलियों ने। पहले BSF के जवानों को मारा पखनजूर के इलाके में, उसके बाद मुख्यमंत्री की चुनावी सभा से ठीक पहले वहां पर नक्सली हमला हुआ और फिर जिस दिन चुनाव का प्रचार खत्म हो रहा था उस दिन भीमा मंडावी की हत्या की जाती है। लेकिन जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं 56% के, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2014 में 59% था मतदान, यानी पिछले लोकसभा के चुनाव में बस्तर में 59% मतदान हुआ था। लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा ये उदासी का माहौल जरूर नजर आया जब भीमा मंडावी की हत्या के बाद जो शहरी मतदाता भी थे, हालांकि श्यामगिरी जहां पर घटना घटी है वहां पर काफी वोट पड़े
बंपर वोटिंग
और जगहों पर उदासी का माहौल देखा गया। सभी मतदाताओं के बीच में वो अफसोस में थे कि इस तरह की घटना घट गई है दो दिन पहले।
लेकिन एक संवेदनशील इलाके का चुनाव संपन्न हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान रावी आपका। बिहार में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई सीटों पर मतदान हुआ और इस चुनाव में जमुई सीट पर सभी की नजर बनी हुई है। सीधे कार्यक्रम में शामिल करते हैं मनीष शांडिल को पटना से। मनीष बताएं कैसी रही मतदान की हलचल आज?
जी आज 6 बजे तक के जो आंकड़े थे उसके हिसाब से जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उन्होंने कुछ देर पहले बताया जो HR श्रीनिवास हैं कि इस बार 53% से कुछ ज्यादा मत पड़े हैं जिन 4 लोकसभा क्षेत्रों का आपने जिक्र किया और पिछली बार के मुकाबले 2% से ज्यादा वोट पड़े हैं। जैसा कि आपने बताया कि जमुई पे सबकी नजर है, उसकी वजह यह है कि वहां से रामविलास पासवान के बेटे एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं अपनी लोजपा की ओर से और एक दूसरी सीट भी है जो अभी चर्चा में है इन 4 सीटों में, वो गया की सीट है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं।
जी और कुल मिला के मतदान ठीक रहा?
जी हाँ, कुल मिला के शांतिपूर्ण रहा और अलग अलग रंग देखने को मिले। गया शहर से वहां के विधायक हैं जो मंत्री भी हैं बिहार सरकार में प्रेम कुमार, वो साइकिल से वोट देने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचे थे। आज बिहार में छठ का भी एक अहम दिन है, आज शाम का जो अर्घ पड़ता है उसका दिन है। इसके बावजूद इन सभी इलाकों में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर इसलिए कि जैसा कि मैंने बताया कि 2% ज्यादा मतदान हुआ है 2014 के मुकाबले और औरंगाबाद जहां पे आज मतदान हुआ वहां पे एक मशहूर सूर्य मंदिर भी है जहां पे बड़ी संख्या में लोग इस पर्व के दिन आते हैं, तो पर्व के बीच एक
लोगों ने समय निकाल ही लिया, लोगों ने मतदान के लिए समय निकाला और पर्व की तरह इसको लिया। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष शांडिल्य आपका। अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां की 80 में से 8 सीटों पर आज वोट डाले गए। 3 केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, सतपाल सिंह और महेश शर्मा के साथ साथ राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी मैदान में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर जहां मतदान हुआ वहीं मध्य उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली सीटों पर काफी गहमा गहमी थी, वहां क्या माहौल था सुनिए समीर आत्मज मिश्र से।
रायबरेली में सोनिया गांधी ने एक बार फिर कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करके उन अटकलों को समाप्त कर दिया कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने पूजा की और फिर रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद थे। सोनिया गांधी रायबरेली सीट से 2004 से लगातार सांसद हैं और ये सीट कांग्रेस और खासकर गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। हालांकि इस बार उन्हें चुनौती अपनी ही पार्टी से बगावत करने वाले और बीजेपी में शामिल दिनेश प्रताप सिंह से मिल रही है। नामांकन के बाद सोनिया गांधी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब सिर्फ इतना दिया कि मोदी सरकार अजेय नहीं है। वहीं करीब 50 किलोमीटर दूर अमेठी में भी लगभग ऐसा ही नजारा था। बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने भी नामांकन दाखिल करने से पहले पूजा पाठ किया, अपने पति जुबिन ईरानी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रोड शो किया और फिर नामांकन के बाद योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया।
आज नामांकन जनता के स्नेह और आशीर्वाद के साथ भरा है। विजय सिंह की घोषणा जनता की उपस्थिति से ही आज हो चुकी है, धन्यवाद।
अमेठी में स्मृति ईरानी का मुकाबला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से है जो कल ही नामांकन कर चुके हैं। नामांकन के बाद कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर कुछ लोगों ने बताया कि उनके लिए चुनावी मुद्दे क्या हैं।
आपको क्या लग रहा है कि ये राहुल गांधी को चुनौती दे पा रही है इस बार?
हाँ पूरा देंगी, चुनौती पूरा देंगी और इतने जोर तोर से तब लगे हैं।
मोदी जी ने बहुत विकास किया है, उज्ज्वला गैस है, PM आवास है और किसानों के लिए बहुत ध्यान दिया है। पहले यहाँ यूरिया खाद नहीं मिलती थी, पूरा खाद मिलने लगी, कोई दिक्कत नहीं है। बिजली जहाँ नहीं थी वहाँ बिजली पहुँचाई गई है।
क्या मुद्दा है यहाँ? ना तो बिजली रहा था ना कोई महंगाई भी है।
अभी भी आप देख लीजिए बिजली है क्या यार, जो
बिजली कहाँ पे
जो चीज़ है वो तो उसको कहिए।
अरे भाई बिजली कहाँ उतना रहा था, पूरा रहता है नहीं।
अरे कहाँ रहने वाले हो आप, बिजली 24 घंटे रहती है यार।
अरे कहाँ रहती है,
अरे
आप अभी ठीक हो कि बाहर के?
नहीं यही के है।
तब बताइए, देखिए अब आपकी बात काट रहे हैं।
ठीक है भाई, अब ये तो आपने अपनी विचारधारा वो उस मत के होंगे
नहीं, लेकिन आने ना आने विचारधारा कौन सी
नहीं रहती है, बोलो उतना नहीं रहती है, रहती है उतना,
जितना ये लोग बता रहे उतना नहीं रहती।
हाँ
तो और किस किस मुद्दे पे और लोग वोट दे रहे हैं? और
आप गांव में जाइए, जो गरीब वर्ग है, गरीब
वो बताएंगे कि कितना
जिनको गैस है। मिली है, जिनके पास छप्पर फूस था, आज उनको पीएम आवास मिला है।
जिस गांव में 10 कॉलोनी नहीं आती थी, उसमें 150 कॉलोनियां मिली हैं प्रधानमंत्री आवास।
प्रधानमंत्री आवास तो हमेशा आते रहते हैं, जो भी शासन होगा होगा सभी में आएंगे, कुछ में कम आएंगे कुछ में ज्यादा आएंगे, ये तो क्रम चलता रहता है हमेशा।
उन्होंने इस पे ध्यान दिया है, सबसे बड़ी बात स्वच्छता में जो शौचालय बनाने, हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी, रिश्तेदार आ जाते थे सर से झुक जाता था सर।
इन दोनों सीटों पर 6 मई को मतदान होना है। समीर आत्मज मिश्र, BBC, अमेठी, रायबरेली।
ये तो चर्चा हुई उत्तर प्रदेश की, और उड़ीसा में आ पहुंचे हैं BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। यहां पर लोकसभा की कुछ सीटों के साथ साथ विधानसभा के लिए भी वोट डाले गए। एक मतदान केंद्र पर पहुंचे नितिन श्रीवास्तव।
धर्मपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से हम जिस इलाके में, छतरपुर इसका नाम है, और उसमें एक मॉडल पोलिंग बूथ है। काफी उत्साह है लोगों में, यहाँ पर सुबह से काफी तादाद में लोग आकर वोट दे रहे हैं। यहाँ पर पर्चियां हैं, वोटर लिस्ट हैं, लोग आके अपना नाम देख रहे हैं, उसके बाद पर्ची लेकर जाकर अंदर मतदान करते हैं। काफी नौजवान हैं, युवा हैं, और काफी जोश लोगों में देखा गया है। यहाँ पर जिन जिन इलाकों में हम गए हैं, जिन जिन पोलिंग सेंटर्स में गए हैं, वहाँ पर लोग काफी एक्साइटेड हैं। 33 डिग्री टेम्परेचर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपसे अभी हमारी बात हो रही थी, क्या इश्यूज हैं यहाँ पर, किन चीजों पर लोग वोट करते हैं?
बेसिकली यहाँ के इश्यूज है हमारे मेडिकल प्रॉब्लम, हेल्थ कंडीशन, हमारे एजुकेशन, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट, लाइकली रोड।
क्या आपको लगता है कि ये एरियाज निग्लेक्टेड थे पहले भी?
कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो बेसिकली वही भी रह गया है।
एक खास बात इस एरिया के बारे में जरूर आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, और आप सब लोग यहाँ पर मदद कर रहे हैं, लोग आते हैं पर्ची में अपना नाम ढूंढते हैं। उड़ीसा में जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है, बीजू जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जो पिछली बार लोकसभा चुनावों में हाशिए पर आ गई थी। भाजपा के पास 21 में सिर्फ एक सीट थी, और 2014 में 21 में से 20 सीटें बीजू जनता दल ने, यानी नवीन पटनायक की पार्टी ने जीती थी।
नितिन श्रीवास्तव बता रहे थे कि उड़ीसा में कैसी रही मतदान की हलचल। दिव्या, कुल मिलाकर आज की हाइलाइट्स क्या हैं, और कुछ बड़े नाम हमने जिक्र किया, और क्या है?
बिल्कुल, कई मौजूदा मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री और कई अलग पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं का राजनीतिक भविष्य आज दांव पर था। आपने जिक्र किया था विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह का, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से लड़ रहे हैं, जहां के वो मौजूदा सांसद भी हैं, और उनके खिलाफ कांग्रेस की डॉली शर्मा और महागठबंधन से समाजवादी पार्टी के सुरेश बंसल हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र के नागपुर से कांग्रेस के नाना पटोले के समक्ष हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू अरुणाचल प्रदेश की सीट, वहां से दो ही सीटें हैं, अरुणाचल वेस्ट से पूर्व मुख्यमंत्री नबम टुकी के खिलाफ खड़े हैं। ये सीट कांग्रेस की मानी जाती थी, पर पिछले साल रिजिजू ने करीब 40,000 वोटों से यहां जीत दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से संस्कृति मंत्री महेश शर्मा कांग्रेस के युवा नेता अरविंद कुमार के सामने हैं, और उनका युवा होना ही उनके पक्ष में बताया जा रहा है, और यहां महागठबंधन से बहुजन समाजवादी पार्टी के सतवीर नागर हैं। उत्तर प्रदेश की ही जो संवेदनशील मानी जाने वाली मुजफ्फरनगर सीट है, उस पर राष्ट्रीय लोकदल के अजीत सिंह, जो महागठबंधन का हिस्सा भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद संजीव बालियान, आमने सामने हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछले आम चुनाव से कुछ महीने पहले मुजफ्फरनगर में दंगे भड़के थे, जिसमें 60 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 50,000 से ज्यादा विस्थापित हुए थे। और अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी उनकी पुरानी सीट बागपत से खड़े हैं, और उनके खिलाफ हैं केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह।
और इन सबके लिए वोटिंग जो है वो हो चुकी है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इस बार जो है वोटिंग बहुत दिन चलने वाली है और इतने चरण तक मतदान होगा, तो ये कहा जा रहा है कि ये शायद सबसे लंबा चुनाव है। लेकिन आजाद भारत का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुआ था और 21 फरवरी 1952 तक चला था, यानी कि 3 महीने तक वो चुनाव चला था। और इस बार अगर हम देखें तो ये पूरी प्रक्रिया 39 दिनों तक चलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या।
शॉर्टवेव 31 और 25 मीटर बैंड, यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
भारत में चुनावों की हलचल के बाद अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को लंदन में इक्वेडोर के दूतावास से गिरफ्तार किया गया है और वो यहां लगभग 7 साल से शरण लिए हुए थे। तस्वीरें जो नजर आ रही हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि सफेद बाल और दाढ़ी वाले एक व्यक्ति को पुलिस की गाड़ी की ओर ले जाया जा रहा है। असांज पर स्वीडन में बलात्कार के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें इक्वेडोर के दूतावास में शरण मिली थी। आरोप लगाने वाली महिला के वकील का कहना है कि वो केस को दोबारा चलाने की मांग करेंगे। और जानकारी के लिए कुछ देर पहले मैंने बात की लंदन में बीबीसी संवाददाता गगन सबरवाल से।
विकीलीक्स के को फाउंडर जूलियन असांज को आज इक्वेडोरियन एम्बेसी जो कि लंदन में है वहां पे उनको अरेस्ट किया गया। जैसे कि आपको पता है मिस्टर असांज ने इक्वेडोरियन एम्बेसी में रेफ्यूज लिया था 7 साल पहले अपने एक्सट्रेडिशन ऑर्डर से बचने के लिए। उनको एक्सट्राडाइट करने वाले थे स्वीडन को क्योंकि एक सेक्सुअल असॉल्ट केस के मामले में, लेकिन अभी तो वो केस ड्रॉप हो चुका है। लेकिन 7 साल से वो इसी इक्वेडोरियन एम्बेसी जो कि लंदन में है उसके अंदर रहे थे। ये कहा गया है स्कॉटलैंड यार्ड में हमें बोला है कि उनको आज इनविटेशन मिला इक्वेडोरियन एम्बेसी के एम्बेसडर से कि वो जूलियन असांज को अरेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इक्वेडोरियन कंट्री इक्वेडोर जो कंट्री है उन्होंने डिसाइड किया कि वो जूलियन असांज का असाइलम जो उनको 7 साल पहले मिला था वो आज वो विदड्रॉ करेंगे। कुछ देर पहले यूके की जो होम सेक्रेटरी है साजिद जा उन्होंने ट्वीट करते हुए बोला कि मैं कंफर्म कर सकता हूं कि जूलियन असांज अभी पुलिस के हिरासत में है और उन्होंने इक्वेडोर कंट्री को थैंक यू बोला उनके कोऑपरेशन के लिए। उन्होंने मेट पुलिस को भी बोला थैंक यू उनकी प्रोफेशनलिज्म के लिए और ये भी ट्वीट करते हुए बोला कि नो वन इज अबाउट द लॉ।
इसके अलावा कानून से ऊपर नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर बात यह कि 7 साल से इस एम्बेसी में वो शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे और उसके बाद अब वो गिरफ्तार हो गए हैं और इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि कई बार उन्होंने जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उनको उनका पालन नहीं किया।
और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर है सर एलन डंकन, जैसे ही जूलियन असांज को अरेस्ट किया गया उन्होंने बोला कि ये अरेस्ट फॉलो करता है एक एक्सटेंसिव डायलॉग बिटवीन यूके एंड इक्वेडोर।
तो अब जूलियन असांज का क्या होगा?
अभी तो वो एक पुलिस स्टेशन में है लंदन में, इसके बाद उनको वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में लेके जाएंगे और वहां पे फिर हमें पता चलेगा उनका अगला एक्सट्रेडिशन स्टेप क्या होगा।
हमारे श्रोताओं को थोड़ा ये बताइए कि जूलियन असांज जो विकिलीक्स के को फाउंडर है सह संस्थापक है, इन पर क्या आरोप हैं और क्यों ये खबरों में रहे हैं पिछले लगभग 7-8 साल से?
जो लोग मिस्टर असांज के साथ काम कर चुके हैं वो बोलते हैं कि वो बहुत ही इंटेंस किस्म के इंसान है, बहुत ही ड्रिवन, बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है और उनके पास एक्सेप्शनल एबिलिटी है कंप्यूटर कोड्स को क्रैक करने के लिए। उन्होंने विकिलीक्स 2006 में शुरू किया था। विकिलीक्स एक कंपनी है जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस पब्लिश करती है और विकिलीक्स ने 2010 अप्रैल में बहुत बड़े हेडलाइंस क्रिएट किए जब उन्होंने एक फुटेज रिलीज किया। नाउ ये फुटेज यूएस सोल्जर्स को दिखा रहे थे जो कि 18 सिविलियंस को शूट कर रहे थे एक हेलीकॉप्टर से इराक में। तो इनका ये जो वीडियो जो विकिलीक्स ने रिलीज किया था इसकी वजह से विकिलीक्स ओवरनाइट एक बहुत ही हेडलाइंस उन्होंने क्रिएट किया और दैट्स हाउ इट बिकेम सो फेमस।
विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज लंदन में इक्वेडोर के दूतावास से गिरफ्तार, जानकारी दे रही थी बीबीसी संवाददाता गगन सबरवाल। और कार्यक्रम में अब आपकी राय।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और आज एक बार फिर मेरे साथ हैं
ज्योतिका। श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार।
जी, ज्योतिका के पास आज बहुत ढेर सारी ईमेल्स हैं। पिछली बार हम ईमेल का इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर पाए थे तो आज बताइए आप कहाँ से शुरुआत कर रही हैं?
ईमेल की शुरुआत मैं करूंगी लद्दाख के ईमेल से। देशकित नोबारा ले लद्दाख से तुंडुप वांग्याल ने आपकी राय में उनकी चिट्ठी शामिल करने के लिए शुक्रिया अदा किया है।
जी शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने चिट्ठी लिखी।
कहा है कि मेरे गांव में मेरी चिट्ठी वायरल हो चुकी है। आगे लिखते हैं, हमारे यहां बीबीसी रेडियो पर प्रसारित होने वाली सच खबरों से सब लोग प्रभावित हैं। ये लिखते हैं, मुझे वसुतुल्ला खान की डायरी पसंद है और पूर्व चुनाव आयुक्त TN शेषन पर रेहान फजल की विवेचना भी बहुत पसंद आई। इन्होंने पूर्णिया की पाकिस्तानी टोला पर सीटू तिवारी की रिपोर्ट की भी
तारीफ की है। साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कभी चिट्ठी में लिखी है अपने गांव का हाल, लेह लद्दाख का हाल, कौन से त्योहार होते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
अगला ईमेल कुवैत से है।
क्या नाम है श्रोता का?
इनका नाम है मोहम्मद अमीरुद्दीन। ये लिखते हैं, 10 अप्रैल को नमस्कार भारत में सीतू तिवारी की पाकिस्तानी टोला पर प्रसारित रिपोर्ट बहुत अच्छी लगी। साथ ही अफसोस भी हुआ कि नाम की वजह से वहां के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। राजेश जोशी से अनुरोध है कि अपनी आवाज में बेगूसराय की रिपोर्ट सुनाएं। आगे लिखते हैं कि सीतू तिवारी का असली नाम भी बताएं।
अरे वाह, ये तो बहुत सारे आपने सवाल कर दिए। सीतू तिवारी का असली नाम मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। उनका असली नाम है सीतू तिवारी। जी हाँ, यही उनका नाम है और वो बहुत अच्छी खबरें करती हैं वहाँ से। रहा सवाल मेरा बेगूसराय जाकर रिपोर्ट करना, तो वो तो अभी संभव होगा नहीं। मैं तो यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, बेगूसराय से हमारे संवाददाता वहाँ हैं, तो अगर संभव होगा तो आप तक वो रिपोर्ट पहुँचाई जाएगी। लिखते रहिएगा।
नालंदा से अमित कुमार लिखते हैं, बीबीसी हिंदी के एडिटर मुकेश शर्मा ने जयाप्रदा का जो इंटरव्यू किया वो बहुत अच्छा लगा।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ये इंटरव्यू बहुत अच्छा था और जयाप्रदा बहुत अच्छी तरह से बोली भी। तो हम तो ऐसे ही इंटरव्यू करवाते रहेंगे, ये हम कोशिश करेंगे।
अगला ईमेल थोड़ा सा चेंज मांग रहा है। भिरानी राजस्थान से लंबोड़िया मदान लिखते हैं, 1977 आम चुनाव की विवेचना ने मन की इच्छा पूरी कर दी। सलमान रावी, नितिन श्रीवास्तव, दिव्या आर्या की रिपोर्ट, सरोज सिंह, सूर्यांशी पांडे का पत्र वाचन और बीबीसी टीम की महिला पत्रकारों का काम बहुत शानदार है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो श्रोता गौर से सुनते हैं उन्होंने ये ध्यान दिया होगा कि बीबीसी रेडियो प्रसारणों में अब हमारी जो महिला पत्रकार साथी हैं उनकी आवाज़ें आपको ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 50-50% दोनों की हिस्सेदारी हो, महिलाओं की भी और पुरुषों की भी। तो ये बदलाव शायद आपको देखने को मिल रहा है या सुनने को मिल रहा है।
अगला ईमेल थोड़ा शिकायत भरा है।
अच्छा बिल्कुल।
हरियाणा से सत्यवीर कुंडू नाराज हैं, लिखते हैं कि उनके बार बार लिखने के बाद भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने बीबीसी पर जिद्दी होने का आरोप लगाया है।
अच्छा, ये तो गंभीर आरोप है।
इन्हें रेडियो की कुछ आवाजें पसंद नहीं है और चाहते हैं कि जो लोग रेडियो के माफिक नहीं हैं उन्हें रेडियो का काम क्यों दिया जाता है।
देखिए कुंडू साहब, आपने ये अपनी बात रखी और ये तो बात सही नहीं है कि हम जिद्दी हैं। हम किसी तरह की जिद नहीं है, लेकिन हमारे रेडियो कार्यक्रमों में जो साथी हिस्सा लेते हैं वही रेडियो पर भी करता है, ऑनलाइन के लिए भी काम करता है या करती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की आवाज़ रेडियो के माफिक नहीं होती है, लेकिन वो लोग कम करते हैं और जिनकी रेडियो के माफिक आवाज़ होती है वो रेडियो पर ज़्यादा आते हैं। तो थोड़ा सा आप भी धैर्य बनाए रखें। तो अब इसके साथ ही समय समाप्त हुआ, चलते चलते पता बताते हैं। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। ईमेल लिखना चाहें तो लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk पर।
नमस्कार।
और अब कार्यक्रम में खेल की खबरें। आदेश कुमार गुप्त मेरे सामने मौजूद हैं। आदेश, आईपीएल में क्या चल रहा है आज?
जी देखिए, आज थोड़ी ही देर बाद जयपुर में मेजबान राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होने वाला है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेल रही चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक 6 में से 5 मुकाबले जीते, केवल एक हारा है। दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे की टीम ने 5 में से 4 मुकाबले हारे हैं, केवल एक जीता है। और आज का मुकाबला भी हारती है तो फिर सुपर फोर की दौड़ से पूरी तरह से बाहर हो जाएगी, क्योंकि किसी भी टीम के लिए लगातार 8-9 मैच जीतना आसान नहीं होता। और अगर चेन्नई की बात की जाए तो हरभजन सिंह, इमरान ताहिर और रविंद्र जडेजा, ये 3 ऐसे स्पिनर हैं जिन्होंने बिल्कुल नक्शा बदल कर रख दिया है विरोधी टीमों का। और इसी बीच बैडमिंटन से एक समाचार ये कि भारत के के श्रीकांत सिंगापुर ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जहां कल उनका सामना शीर्ष वरीयता हासिल केंतो मोमोता से होगा। इससे पहले मोमोता ने 2 भारतीय खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया। तो कमाल की बात है कि भारत के जो 3 प्रमुख खिलाड़ी वो मोमोता का सामना कर रहे हैं।
एक चीज़ बता दीजिए कि IPL में अभी तक कौन सी वो टीम है जो सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रही है?
जी देखिए, आकर्षित करने की बात तो चेन्नई की ही है, लेकिन फिर भी जिस तरह से आंद्रे रसेल का जलवा है कोलकाता में और पोलार्ड ने कल जिस तरह से जलवा दिखाया मुंबई के लिए, तो ये 3 टीमें हैं जिन्हें देखने के लिए दर्शक बहुत बेकार आ रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम में इससे पहले आपसे विदा लें, मुख्य समाचार सुनने का वक्त आ चला है।
बीबीसी समाचार। लोकसभा चुनाव के पहले दौर का मतदान संपन्न हो गया है। गुरुवार को 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटों पर वोट डाले गए। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को लंदन में इक्वाडोर के दूतावास से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो लगभग 7 साल से शरण लेकर यहां रह रहे थे। ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने ब्रेग्जिट को 6 महीनों से अधिक समय के लिए टालने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि अपने वादे को पूरा करना उनकी प्राथमिकता में है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। मुलाकात होने का समय है सुबह 6:30 बजे। नमस्कार भारत में। मोहनलाल शर्मा को शाकिर आलम के साथ विदा दें। नमस्कार।